ايه الحمد لله وكفى، الحمد لله وكفى، سلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد، ايش لتند نصر مقام رزاق بگفتگوه ہو رہی ہے، اور مقام رضا کے بارے میں ہم نے یہ بتایا کہ سالک جب ذکر اذکار کرتا ہے، شیخ کی صحبت میں آنا جانا رکھتا ہے، تو اسے ایک ایسی کیفیت یا ایسا مقام نصیب ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہر حالات پر راضی ہو جاتا ہے. تبن اس دنیا میں جو کچھ اس کے پاس ہے اس پہ وہ قناعت کر جاتا ہے. اس لیے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بیان کیا گیا. آپ کو خبر ملی کہ آپ کا بحری جہاز جو ہے جس میں آپ کا اتنا سامان تھا وہ ڈوب گیا، تو آپ نے الحمدللہ کہا. پھر اسی خادم نے آ کے خبر بتائی جی آپ کا بحری جہاز جو ہے وہ ڈوبا نہیں، کنارے پہ لگ گیا، آپ نے پھر بھی الحمدللہ. تو مقام رضا، اس کی ڈیفینیشن، اس کی تعریف تو یہی کہ سالک جو ہے اس کو قناعت نصیب ہو جائے اس چیز پہ جو اللہ نے اس کو دی ہے، جو حالات اس نے اس کی اللہ نے اس کی طرف بھیجے اس پہ وہ صبر کر لے، جو نعمتیں اللہ نے اس کو دی ہیں اس پہ وہ شکر کر لے، اور اس کے اپنے دل میں کوئی خواہش ہی باقی نہ رہے. تو یہاں یہ سوال پھر پیدا ہوتا ہے، اور یہ سوال کئی مرتبہ کیا گیا کہ اگر پھر کوئی خواہش ہی باقی نہ رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مقام رضا والا سالک ہے وہ پھر کسی چیز کے لیے دعا کرتا ہی نہیں ہے، کسی دنیاوی نعمت کے لیے دعا کرتا ہی نہیں ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے نیک اولاد مل جائے، یا اولاد مل جائے، یا اچھی نوکری مل جائے، یا بہتر گاڑی مل جائے، یا جو دنیا کی نعمتیں ہوتی ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں فلاں ملک کا پاسپورٹ مل جائے، اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، تو کیا ہم ان چیزوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں؟ تو دعا کرنا ان چیزوں کے لیے جائز ہی نہیں صرف، بلکہ ان چیزوں کے لیے دعا کرنا جو ہے وہ محمود ہے، بہتر ہے. تو اب ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ جی سالک اللہ کی رضا پہ راضی، اچھا گھر ملے نہ ملے، اچھی گاڑی ملے نہ ملے، اچھا کام کاروبار ملے نہ ملے، وہ خوش ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی رضا پہ راضی. دوسری طرف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی دعا کرنا بڑی عبادت ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس پر دعا کے دروازے کھل گئے اس پر اللہ کی رحمت کے دروازے کھل گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تمہیں اگر جوتے کا تسمہ بھی چاہیے وہ بھی اللہ سے مانگو. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو ہر وقت اللہ سے مانگتا ہے، ہر چیز اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اس کو اپنے اولیاء کرام میں شامل فرما لیتے. تو پھر اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مشائخ نے اس کا جواب دیا کہ مومنین جو سالکین ہوتے ہیں इस रास्ते पे चलने वाले वो दो किस्म के हैं, एक होते हैं अबरार, एक होते हैं मुकर्रबीन। अबरार कहते हैं आम नेक लोगों को, और सालिक इब्तदाई तौर पर अबरार में शामिल होता है, और सालिक का गोल जो होता है वो मुकर्रबीन में से बन जाना होता है। तो जब तक तो वो अबरार है और उस मकाम पे नहीं पहुंचा जिस पे सालिक जो है वो अल्लाह का बड़ा वली बन जाता है, उस वक्त उसका दिल जो है वो दुनियावी चीजों को पसंद भी करेगा और उसकी दुआएं जो है वो दुनिया से मुताल्लिक ज्यादा होंगी। और जब वो उस मकाम पर पहुंच जाएगा जिसको मुकर्रबीन का मकाम कहा जाता है, तो फिर उसके दिल के ऊपर दीन का गलबा होगा, उसकी दुआओं का महवर और मरकज दीनी चीजें होंगी। तो फिर उसकी ज्यादा दुआ जो है वो ये होगी कि या अल्लाह मुझे लंबी तहज्जुद नसीब फरमा, तो या अल्लाह तू मुझे हर वक्त अपनी याद नसीब फरमा, और या अल्लाह तू मुझे अपने घर का दीदार नसीब फरमा। तो इस तरह की दुआएं वो उसके अंदर ज्यादा गालिब होंगी, या अल्लाह मुझे शरीयत के तमाम अहकाम पूरे करने वाले बना, तो कहीं मैं गुनाह में ना फंस जाऊं, इस तरह की दुआएं ज्यादा गालिब होंगी। और दुनियावी मामलात पे वो कनात कर जाएगा। तो जब मुकर्रबीन बन जाते हैं तो तबीयत ऐसी बन जाती है कि दुनियावी मामलात में कनात होती है, दीनी मामलात में वो बहुत ही ज्यादा दुआएं करता है। तो दुआ ये भी करता है और दुआ वो भी करता है, मगर दिल की हालत जो है वो बदल जाती है। तो सवाल ये है कि जी दुआ क्या नहीं करनी चाहिए? दुआ बिल्कुल करनी चाहिए। और इसी तरह अगर किसी के दिल में दुनियावी चीजों के लिए रग़बत ज्यादा है, जैसे सालिक को इब्तदान ज्यादा होती है, तो ऐसा करना भी सवाब ही का बायस है। मिसाल के तौर पे अगर किसी को नौकरी चाहिए, वो नौकरी के लिए कोशिशें कर रहा है मगर दुआएं नहीं कर रहा, उसके मुकाबले में एक सालिक है जो नौकरी भी हासिल कर रहा है, साथ साथ नौकरी की भी कोशिश कर रहा है, साथ साथ दुआएं भी खूब कर रहा है, तो अल्लाह के यहाँ ये जो दुआ करने वाला है ये ज्यादा मकबूल है और ये अल्लाह के रास्ते पे आगे बढ़ने वाला है। तो मकाम रजा हासिल करने और मकाम रजा की तरफ बढ़ने वाला सालिक के लिए दुनियावी चीजों से दुआ और दुनियावी चीजों के लिए दुआ करना मना नहीं है। जब ये मकाम रजा हासिल हो जाएगा तबीयत दुनियावी चीजों की तरफ रगबत करना कम कर देगी, इसलिए उसकी दुआओं का माहौल और मरकज दीनी चीजें होंगी, दुनियावी चीजें कम हो जाएंगी। इसीलिए नेकियां दोनों कर रहे होते हैं, मगर अगर मुकर्रबीन वो वाले आमाल शुरू कर दें जो अबरार कर रहे हैं, तो सुलूक की लैंग्वेज में कहा जाता है कि वो गुनाह कर रहे हैं। अरबी का मकूला है हसनातुल अबरार सय्यातुल मुकर्रबीन, कि जो अबरार मुबतदी नेकियों वाले लोग होते हैं, इन अबरार की जो नेकियां होती हैं ये मुकर्रबीन के लिए तो गुनाह होते हैं। तो मुकर्रबीन की तबीयत ये नहीं चाहेगी कि या अल्लाह फला लड़की से मेरी शादी हो जाए और फला मॉडल की मुझे गाड़ी मिल जाए और फला मुल्क का मुझे पासपोर्ट मिल जाए। वो उस तबीयत ही चेंज हो चुकी है, इतने साल अल्लाह अल्लाह करते हुए जो गुजर गए, अब दिल पे अल्लाह की याद का गलबा है तो इस तरफ रग़बत नहीं रहती। तो इसलिए अगर वो इस तरह से दुआ इन चीजों के लिए करेगा तो वो उसके मकाम से नीचे की चीज है। इसकी मिसाल यूं समझें कि एक शख्स है, 10 साल से हर रोज रात को 2 घंटे 2.5 घंटे अगर वो नफल पढ़ रहा है, अब उसका मकाम यही है। 10 साल बाद किसी एक रात उसको रात के आखिरी 5 मिनट में जल्दी जल्दी से 2 नफल पढ़ने का मौका मिल गया। अब सच्ची बात यह कि आखिरी 5 मिनट में उसने जो 2 नफल पढ़े हैं, बहरहाल उसने तहज्जुद की नमाज अदा की है, और तहज्जुद पढ़ने वाला नफल पढ़ने वाला वो वक्त है जहां दुआएं कबूल होती हैं, तो बड़ा अल्लाह का मुकर्रबीन बड़ा नेक बंदा है वो। मगर उस बंदे का जो मकाम है जिसने 10 साल 2.5-3 घंटे नफलें अदा की हैं, और उसने अगर एक दिन 5 मिनट कर ली, तो बहरहाल उसके मकाम के मुताबिक ये एक नीचे की चीज है, कमतर चीज है। तो अगर जाहिरन शरीयत को देखेंगे तो आखिरी 5 मिनट में भी नफल पढ़ लिए तो बहरहाल तहज्जुद गुजार बन गया और बड़ी नेकी कर ली, मगर उसके मकाम उस मुकर्रबीन के मकाम से ये नीचे वाली चीज है। तो इसको कहते हैं हसनातुल अबरार सय्यातुल मुकर्रबीन। तो अब फाइनल इसका हल ये है कि जी मैं क्या करूं, दुनियावी चीजों के लिए दुआ करूं और दीनी चीजों के लिए भी दुआ करूं, या बस अब मकाम रजा हासिल करने के लिए दुआएं छोड़ दूं? ना ना ना, दुआएं तो दोनों किस्म के लोग, इब्तदाई मुब्तदी सालिक भी करता है, मुंतही भी करता है, और मुंतही ज्यादा करता है। तो दुआएं जारी रखें, दिल में जिस चीज का भी तकाजा पैदा होता है, इन दुआओं को कसरत से करने से, चाहे दिल में दुनिया का तकाजा पैदा होता है, दीन का तकाजा पैदा होता है, डट के सालिक दुआ करें। दुआएं करते करते ये मकाम रजा हासिल जब हो जाएगा तो दुआओं का रुख बदल जाएगा। इसलिए सालिक जो है उस चीज की फिक्र ना करे कि जी मैंने दुनियावी चीजों के लिए दुआ नहीं करनी, खूब दुआ करे। कई मरतबा वाकईतन उसको पता नहीं होता है सालिक को कि जी अल्लाह ताला की रजा है किस चीज में, कि मैं ये फला काम कर रहा हूं, मेरा दिल तो ये चाह रहा है मैं अल्लाह की रजा के मुताबिक करूं, तो अगर इसमें अल्लाह की रजा नहीं है तो मैं ना करूं ये काम। तो सालिक कसरत से इस्तखारा करे अपने काम। एक आखिरी बात बतानी जरूरी है कि कई मर्तबा ऐसे भी मुकर्रबीन गुजरे हैं जिन्होंने दुनियावी चीजों के लिए भी दुआ की और खूब दिल से दुआ की, जैसे ऐसे अंबिया भी गुजरे हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इमरान अलैहिस्सलाम, जिन्होंने औलाद के लिए दुआ की, अल्लाह ने उनको बुढ़ापे तक औलाद नहीं दी, बुढ़ापे तक दुआ करते गए, हालांकि एक दुनियावी नेमत है। तो कई मरतबा जो मुकर्रबीन होते हैं वो भी दुनिया की नेमतों के लिए दुआ करते हैं। तो यहां से पता चल रहा कि दुआएं किसी चीज के लिए, जिस चीज का दिल में तकाजा हो रहा है उसके लिए खूब दुआ करें, क्योंकि दुआ के 2 फायदे हैं, एक दुआ खुद करना बड़ी इबादत है और दूसरा दुआ अल्लाह की याद भी है। तो दुनियावी चीजों के लिए दुआ करते 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 सालिक जो है वो मुकर्रबीन में से बन जाता है, उसकी दुआओं का रुख बहरहाल बदल जाता है। तो ये एक मुख्तसर सा جواب اس سوال کا، اور سچی بات یہ ہے کہ جب بھی مقام رضا پہ گفتگو ہوئی ہے یہ سوال ضرور اٹھا، اس مرتبہ بھی یہ سوال ساتھیوں میں سے کسی نے کیا، اس سے پہلے خواتین کی جو تفسیر کی کلاس ہے اس میں بھی جب اس بات پہ گفتگو ہوئی تو یہی سوال آیا کہ کیا ہمیں مقام رضا والے سالے کو پھر دعا کرنے کی ضرورت ہی نہیں، وہ اپنے دل میں کسی چیز کے لیے اللہ سے کچھ نہ مانگے، تو ایسا نہیں، جو دل میں تقاضا پیدا ہوتا ہے اس کے لیے دعا خوب مانگے، یہ دعا سے زیادہ برکت والی چیز شاید ہی کوئی ہو. اللہ تعالی ہمیں اپنے مقربین میں شامل فرمائے، اور یہ بہترین مقام جو ہے اللہ اس کو ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیجیے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.